वे जिनकी स्पेस फ्लाइट छूट गई। किस्मत भी ना अजब गजब खेल खेलती है, जब ये मेहरबान होती है तब झोली में खुशियां ही खुशियां बरसती हैं, रूठ जाए तो आती खुशी भी हाथ से निकल जाती है। 1980 के दशक में नासा से ट्रेनिंग ले चुके इसरो के दो साइंटिस्टों के साथ ऐसा ही हुआ। किस्मत ने धोखा न दिया होता तो इनमें से एक अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होते। प्रकाश चंद्रा की रिपोर्ट। राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। देश ने उसी दौर में पी राधाकृष्णन और एनसी भट्ट नाम के दो अंतरिक्ष यात्री भी तैयार किए थे। अगर तकदीर ने साथ दिया होता तो इनमें से एक अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होते। आज देश अंतरिक्ष यात्रियों की नई टीम तैयार कर रहा है जो रूस में ट्रेनिंग ले रही है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो इनमें से चार एस्ट्रोनॉट ट्रेनी को चुनेगा, फिर 2022 में श्रीहरिकोटा से स्पेस में भेजे जाने के लिए इनमें से तीन चुने जाएंगे। ये सभी ट्रेनी भारतीय एयरफोर्स के टेस्ट पायलट हैं। एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में न जा सका। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा ने सोवियत स्पेस स्टेशन साल्यूत पर सवार होकर धरती की परिक्रमा की थी। विंग कमांडर रवीश मल्होत्रा उनके बैकअप थे। देश ने उसी दौर में दो और अंतरिक्ष यात्रियों को तैयार किया था जिनमें नाम शायद ही लोगों को याद हैं। ये थे पी राधाकृष्णन और एनसी भट्ट। दोनों इसरो के साइंटिस्ट थे जिन्हें नासा ने ट्रेनिंग दी थी। अगर किस्मत ने धोखा न दिया होता तो इनमें से एक अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होते। राधाकृष्णन ने बताया, मैं खुद को ऐसा एस्ट्रोनॉट मानता हूं जो जन्म न ले सका। ये 1960 के दशक के आखिर की बात है, तब दुनिया अमेरिका और सोवियत रूस के बीच चल रही स्पेस रेस से स्तब्ध थी। उस समय इसरो ने भी रॉकेट लॉन्च करने की दिशा में छोटे कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे। राधाकृष्णन ने अंतरिक्ष में जाने का प्रस्ताव खुद रखा। राधाकृष्णन बताते हैं कि सोवियत अंतरिक्ष यान में राकेश शर्मा की ऐतिहासिक उड़ान के बाद वो त्रिवेंद्रम गए। वहां ऑल इंडिया रेडियो के लिए उन्होंने शर्मा का इंटरव्यू लिया। राधाकृष्णन ने तब तक ये नहीं सोचा था कि वो कभी अंतरिक्ष में जाने के करीब पहुंच जाएंगे, लेकिन उसी साल इसरो ने दो भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने का फैसला किया। जब उसने अपने यहां इसके लिए लोगों की तलाश शुरू की तो राधाकृष्णन ने अपना नाम आगे बढ़ा दिया। उन्होंने बताया, इसरो को साइंस की पढ़ाई करने वाले या इंजीनियरिंग कर चुके शख्स की तलाश थी जो फिटनेस के नासा के मानकों को पूरा करता हो। इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन यानी IAM बेंगलोर में करीब 400 संभावित प्रत्याशियों के मेडिकल, स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल टेस्ट हुए, जिनमें से 7 को चुना गया। राधाकृष्णन ने बताया कि सिर से पांव तक हमारी मेडिकल जांच हुई, हमें एक मेडिकल स्पेशलिस्ट से दूसरे के पास भेजा जाता रहा। बस इतनी मेहरबानी की गई कि गायनोकोलॉजिस्ट के पास नहीं भेजा गया। कुछ ऐसे टेस्ट हुए जिनमें 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 40 मिनट तक ट्रेडमिल पर चलना था। ये टेस्ट हफ्ते भर चले, जो सुबह 7 बजे शुरू होते थे और दोपहर तक चलते थे। आखिर में साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट अनगिनत सवाल पूछते थे। इसके बाद एक सिलेक्शन बोर्ड ने शर्मा और भट्ट को जून 1985 में JSC में और टेस्ट के लिए चुना। इस बोर्ड में विंग कमांडर राकेश शर्मा और नासा के पॉल वाइज भी थे। राधाकृष्णन कहते हैं, उस वक्त तक हमें जो नंबर दिया गया था वही हमारी पहचान बन गया था। जब हमें आगे के टेस्ट के लिए चुना गया तो लगा कि हमें हमारी पहचान वापस मिल गई है। पर्सनल रेस्क्यू सिस्टम टेस्ट बहुत मुश्किल था। JSC में पर्सनल रेस्क्यू सिस्टम यानी PRS नाम का टेस्ट भी होना था। राधाकृष्णन ने बताया, इस टेस्ट में हमें कई बार घंटों बैठकर बचाव दस्ते का इंतजार करना पड़ता था। इसके लिए मुझे काले रंग के एक बैग में घुसना पड़ता था। बैग बहुत बड़ा नहीं था और ये भी पता नहीं होता था कि उसमें कितनी देर तक बैठना होगा। इसमें चेन लगी थी जिसे बाहर से बंद कर दिया जाता था। इसके बाद घुप अंधेरा छा जाता था। बैग में फ्रेश एयर सप्लाई की जाती थी। इस दौरान कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए बाहर की टीम से मेरा संपर्क बना रहता था। मुझे बताया गया था कि जब तक मैं अंदर रहूंगा बाहर की टीम मुझसे संपर्क नहीं करेगी। हालांकि असहज महसूस होने पर मैं कभी भी उनसे मदद मांग सकता था। मेरे सीने पर लगे इलेक्ट्रोड्स की मदद से बाहर की टीम लगातार मेरा हार्ट रेट मॉनिटर करते थे। नासा के बाद देश में शुरू हुई ट्रेनिंग। नासा में ट्रेनिंग और टेस्ट पास करने के बाद राधाकृष्णन और भट्ट भारत लौट आए। इसके बाद IAM में उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई जो 8 महीने चले। दोनों ने इसके बाद नासा में 4 महीने तक चलने वाले मेडिकल और साइकोलॉजिकल इवेल्यूशन के लिए तैयार थे। इतना सब होने के बाद 1986 में उन्होंने कैलिफोर्निया के फोर्ड एरोस्पेस कम्युनिकेशंस कॉरपोरेशन में समय गुजारा, जहां इनसेट सैटेलाइट बनाए जा रहे थे। इसके बाद उन्हें लंबे समय तक ये जानने के लिए इंतजार करना था कि नवंबर के मिशन के लिए अंत में दोनों में कौन चुना जाता है। राधाकृष्णन ने बताया, लेकिन ये हो न सका। 28 जनवरी को नासा के शटल चैलेंजर में लॉन्च के 72 सेकंड बाद धमाका हुआ और उस पर सवार 7 अंतरिक्ष यात्री मारे गए। राधाकृष्णन का ख्वाब टूटा। हादसे के बाद नासा ने 6 महीने के अंदर फिर से अंतरिक्ष उड़ान शुरू करने का दावा किया, लेकिन हादसे की जांच समिति की रिपोर्ट आने में 4 साल लग गए। उसने अंतरिक्ष यान की डिजाइन में बदलाव का सुझाव दिया, इसमें और 4 साल लगे। तब तक इसरो इनसेट सैटेलाइट को यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एरियन लॉन्च व्हीकल से छोड़ने का फैसला कर चुका था। नासा ने भी कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च सर्विस पर अपनी नीति बदल ली थी। उसने कमर्शियल लॉन्च बंद कर दिए थे, इसलिए वे नासा के यान में सवार होकर अंतरिक्ष में नहीं जा सकते थे। राधाकृष्णन अब तिरुवनंतपुरम में रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी गुजार रहे हैं, जहां से देश का अंतरिक्ष प्रोग्राम शुरू हुआ था। उन्हें गगनयान और देश के नए अंतरिक्ष यात्रियों का इंतजार है। वो बताते हैं, इंसान को अंतरिक्ष में भेजना बहुत खर्चीला होता है। हाल में देश में इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है, लेकिन खर्च इससे कहीं अधिक होगा। देश ने इसकी तैयारी 10 साल पहले शुरू की थी। सरकार ने 2021 में इंसान को अंतरिक्ष में भेजने का ऐलान किया है, जिसे पूरा करने के लिए तेजी से काम हो रहा है। दशकों पहले भले ही राधाकृष्णन अंतरिक्ष में जाने से रह गए थे, लेकिन देश से अंतरिक्ष यात्रियों की नई टीम का ये सपना जरूर पूरा होगा।